समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
एक अकेले व्यक्ति और सन्यासी के अकेलेपन में बड़ा अंतर है। एक अकेला व्यक्ति दूसरों से अलग होकर अपने में रहता है और एक सन्यासी अपनेपन से मुक्त होकर दुनिया में जीता है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक नई सुबह के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं, लेकर देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग फॉर यू आवर फॉरएवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन ओवर द नेक्स्ट हाफ एन आवर वील ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, Metro City updates, as well as some historical information related to this day, that is the 8th of November. But let's begin with the news.
जी हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो धुले और नाशिक में सार्वजनिक बैठकों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग आगामी विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए अभूतपूर्व जीत सुनिश्चित करेंगे। उधर झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि झारखंड की जनता राज्य में हेमंत सोरेन सरकार से की कुशासन से तंग आ चुकी है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने खूंटी में कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में कई विकास परियोजनाएं पूरी हुई हैं। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन और वामपंथी दलों के नेताओं ने भी राज्य में विभिन्न हिस्सों में चुनाव सभाएं की हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है। रांची में इन दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से झूठे वादे कर उन्हें गुमराह करने से बचने की सलाह दी। उन्होंने चुनावी सभाओं के दौरान व्यक्तिगत हमले से भी बचने की सलाह दी है।
President Draupadi Murmu will address the Vigilance Awareness Week function of the Central Vigilance Commission, CVC, in New Delhi today. Vigilance Awareness Week is observed every year by the CVC during the week when the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel falls. This year, Vigilance Awareness Week was observed from the 28th of October to the 3rd of November with the theme Satyanishtha Ki Sanskriti Se Rashtra Ki Samriddhi, Culture of Integrity for Nation's Prosperity. Along with the Vigilance Awareness Week, the Commission organizes a three-month campaign on preventive vigilance, which has been undertaken by the ministries and departments of the central government from 16th of August 2024 and will continue till the 15th of November. During the function, three booklets prepared by Central Vigilance Commission are expected to be released. Along with these booklets, a special cover issued by Department of Post on Vigilance Awareness Week 2024 is also expected to be released.
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज सिंगापुर जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर आसियान भारत नेटवर्क के आठवें गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए सिंगापुर के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विभिन्न भू राजनीतिक मुद्दों, वर्तमान संघर्षों और भारत की सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की। भारत ने आरोप लगाया कि कैनबरा में डॉक्टर जयशंकर और पेनी वोंग के ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के प्रसारण के कुछ घंटों बाद कनाडा ने एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया संस्था पर पाबंदी लगा दी। डॉक्टर जयशंकर ने कल ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा संपन्न करने के बाद पेनी वोंग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान ब्रैम्पटन मंदिर घटना पर और भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद पर सवाल उठाए थे।
The External Affairs Ministry has said that India and the US will work together to enhance the well-being of the people and to ensure peace and security. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Prime Minister Modi spoke to President-elect Donald Trump and conveyed that India is looking forward to further strengthening the India-US comprehensive global and strategic partnership. Mr. Jaiswal said the India-United States partnership is multifaceted and special. On cancellation of some of the scheduled consular trips in Toronto, Canada, Mr. Jaiswal said these camps had been cancelled as they did not get adequate security or security assurance from the Canadian government.
बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर फैसला सुनाएगी। इस साल फरवरी में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
द सेकेंड एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल IMHF इज ऑल सेट टू बिगिन इन द नेशनल कैपिटल टुडे। The two-day festival aims to engage global and Indian think tanks, corporations, public and private sector undertakings, non-profits, academicians and research scholars, focusing on India's national security, foreign policy, military history and military heritage.
श्रोताओं, वक्त हुआ है महानगरों के समाचार जानने का, तो वीसी प्रमोद सबसे पहले चेन्नई के समाचार बताएं अपने श्रोताओं को।
जी बिल्कुल, द मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड विल कंडक्ट एन एग्जाम ऑन January 27, 2025 फॉर रिक्रूटिंग 2,553 डॉक्टर्स। तमिलनाडु हेल्थ मिनिस्टर एम सुब्रमण्यम सेड दैट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। दिस वुड हेल्प द हेल्थ डिपार्टमेंट fill vacancies that would arise until 2026. In March, the MRB invited applications to fill 2,552 doctors' posts in Tamil Nadu Medical Service. Due to elections, July 15th was the revised last date. The Madras Recruitment Board received nearly 24,000 applications till then. He said that the board is verifying documents submitted by the candidates. Officials have spoken to agencies that can conduct exams. We've decided that all candidates will take the online test together on Jan 27th. Two brothers from Chennai have developed and patented a technology that uses light-emitting diodes to produce heat, which can be used to make soups, broths, or even heat a room. Sanjay and Vijay, his brother, designed and developed a working model resembling a utensil, testing a method to collect and utilize the heat emitted by LEDs for sustainable heating applications. LEDs are semiconductor devices that emit light when current flows through them. When left for an extended period, they can generate a considerable amount of heat. Sanjay said that they tested a process using fine-tuned LEDs to produce more heat when current flows through them. They designed a utensil with an apparatus and chambers, testing it using computer tools, and later developed a working model. He told that they were able to achieve temperatures of 100 degrees centigrade, which can help boil water to make a broth.
और चेन्नई के बाद अब मुंबई के समाचार अपने श्रोताओं को बता दें प्रमोद
जी।
जी हाँ, ब्रहन मुंबई नगर पालिका ने मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कल समीक्षा बैठक की। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी और पश्चिमी उपनगर के अतिरिक्त नगर आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने नगर निकाय के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में पीने के पानी, कूड़ेदान, शौचालय, विकलांगों के लिए व्हीलचेयर और रैंप, कुर्सियां या बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कतार में बैठने के लिए बेंच और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये भी निर्णय लिया गया कि लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उचित योजना बनाई जानी चाहिए।
एंड मुंबई से चलते हैं वापस बेंगलुरु पे।
जी,
Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has noted that women have contributed significantly to the progress of Amrit Kaal in its journey towards Vikasit Bharat by 2047. He was speaking at the event organized by Goldman Sachs, which has trained and financed women entrepreneurs across India. The minister hoped that women will continue to break barriers and empower others. He appreciated the efforts made by the private finance agency to train 3,500 women entrepreneurs out of the target 10,000 women. He noted that such activities drive economic activities. The Goldman Sachs, in partnership with IIM Bangalore and the Indian School of Business in Hyderabad, has started the 10,000 Women Finance for Growth initiative last year, which has helped women entrepreneurs to access external finance for their ventures. Still with Bangalore, the Southwestern Railway will launch Digital Life Certificate Campaign 3.0 to simplify the process for pensioners to submit their life certificate. Instead of the pensioners visiting the bank in person each November to submit the life certificate, the new campaign will allow online admission options to save time and effort of the pensioners. The secure, convenient and time-efficient alternative to physical submissions will empower the pensioners by providing an easy digital process.
और कोलकाता के समाचार भी अपने श्रोताओं को बता दें प्रमोद, तो पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाएगी। सरकारी दफ्तरों में बिजली की बर्बादी रोकने के लिए फैसला किया गया है। कार्यालयों में बिजली खपत के लिए प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज की तरह रिचार्ज कराना होगा। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इस मामले की निगरानी करेगी और रिचार्ज समाप्त होने पर उस कार्यालय की बिजली अपने आप काट दी जाएगी।
The Telangana Security Cyber Bureau, TGSSB, has held a week-long cyber awareness campaign with an initiative to help senior citizens across the state of Hyderabad to vital information to protect themselves from online scams and cyber threats. Through its district coordination cells, the TGSSB conducted awareness campaigns at various communities throughout the state. 30 senior citizens representing various associations within the Greater Hyderabad Municipal Corporation limits participated. They were educated on how to detect scams, defend against them and trending cyber threats, including digital error scams, trading investment fraud and emergency deception scams. Videos and posters especially designed to enhance cyber awareness among senior citizens were also launched during the event. The campaign will continue through targeted online groups. These groups will be used to share awareness campaigns regarding trending cyber crimes and best practices for online safety.
और अब चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबरों की ओर। तो दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज सवेरे वायु गुणवत्ता सूचकांक 384 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर में अगले 2-3 दिन के दौरान रात और सवेरे के दौरान धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के आंकड़े को पार करते हुए गंभीर स्तर में पहुंच गया है। आनंद विहार में 416 ये दर्ज किया गया, जबकि रोहिणी में 440, अशोक विहार में 420, न्यू मोतीबाग में 429, पंजाबी बाग में 405 और नेहरू नगर में ये 412 दर्ज किया गया। इस बीच प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने कल नई दिल्ली में वायु गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन पर सभी संबंधित पक्षों की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने की। उन्होंने कहा कि तेजी से परिवर्तित होती जलवायु परिस्थिति में वायु गुणवत्ता में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके जन स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के गाजियाबाद स्टेशन पर आज नमो भारत अनप्लग्ड म्यूजिक शुक्रवार सीजन 1 कार्यक्रम के आखिरी प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। RRTS ने बताया कि इस कार्यक्रम में 5 म्यूजिक बैंड और गायकों द्वारा संगीत प्रस्तुतियां दी जाएंगी। RRTS ने इसमें सभी लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा है। और प्रमोद जी, हम अब बात करेंगे छठ पूजा की। आज उसका आखिरी दिन है और उगते हुए सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पूरे भारत में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा के चौथे दिन आज सवेरे श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ दिया। इसी के साथ 4 दिन का छठ पर्व संपन्न हो गया। राजधानी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए गए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सभी श्रद्धालुओं को छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए दिल्ली वासियों के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री आतिशी ने छठ घाट पर पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ पूजा में भाग लिया। इस बीच रेलवे ने छठ पूजा समारोह की समाप्ति के बाद यात्रियों की वापसी के लिए 500 से अधिक विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की है। रेलवे बोर्ड ने बताया है कि आज से लौटने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समस्तीपुर, दानापुर और अन्य मंडलों से अतिरिक्त रेलगाड़ियों की योजना बनाई गई है। रेलवे आज भारी यात्रा प्रभाग को समायोजित करने के लिए 164 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इसने कल के लिए 160, 10 नवंबर के लिए 161 और 11 नवंबर के लिए 155 विशेष रेलगाड़ियों की योजना बनाई है।
पहले हम छठी मैया बरत तो हाथ, छठी मैया बरत तो हाथ, करी हाथ क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार।
मैं छठ कर रही हूँ, घर के परंपरा खत्म ना हुई।
और अब बात कर लेते हैं खेल जगत की हलचल की। तो खेल जगत की तमाम खबरें लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं नवीन सक्सेना। नवीन, आप बताएं कि आज खेल खबरों की कहां से शुरुआत कर रहे हैं?
मुकेश, फ्रांस में मोसेले ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और पुर्तगाल के फ्रांसिस्को कैब्राल का मुकाबला फ्रांस के पियरे ह्यूजिस हॉबर्ट और अल्बेनो ओलिवेटी की जोड़ी से होगा। इससे पहले कल क्वार्टर फाइनल में ऋत्विक और कैब्राल की जोड़ी ने मैक्सिको के सेंटियागो गोंजालेस और फ्रांस के एडवर्डो रोजर वाजेलिन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को 7-6, 6-4 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। बैडमिंटन की बात करें तो भारत के किरण जॉर्ज आज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमा ओबायाशी के साथ खेलेंगे। जॉर्ज ने कल प्री क्वार्टर फाइनल में ताइवान के ची यू जेन को 21-17, 19-21, 21-17 से हराया था। टूर्नामेंट में आज अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं। बात क्रिकेट की, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज डर्बन के किंग्समीड में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा मैच रविवार को गकेबेरा के सेंट जॉर्ज पार्क में होगा। तीसरा मैच सेंचुरियन में, जबकि चौथा और अंतिम मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। दोनों टीमों ने आखिरी बार जून में ब्रिजटाउन के किंगस्टन ओवल में T20 विश्व कप का फाइनल खेला था। भारत ने यह मुकाबला 7 रन से जीता था। भारत ने पिछली T20 श्रृंखला बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से जीती थी। वर्तमान में भारत ICC पुरुष T20 रैंकिंग में शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका 6 स्थान पर है। बात शतरंज की, भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने कल चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में एलेक्सी सरानाक पर तीसरे दौर की शानदार जीत के बाद फिडेश विश्व शतरंज रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। सरानाक के खिलाफ एरिगेसी की जीत ने न केवल उनकी रैंकिंग में वृद्धि की, बल्कि उन्हें मास्टर वर्ग में बढ़त भी दिलाई। प्रतियोगिता में अर्जुन 3 राउंड की कड़ी स्पर्धा के बाद ईरानी ग्रैंड मास्टर अमीन तबातौबई के साथ तालिका में शीर्ष पर हैं। सरना के खिलाफ एरिगेसी ने काले मोहरों के साथ खेलते हुए विशिष्ट साहस और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया और इस जीत से वैश्विक शतरंज में वो सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं में एरिगेसी का दबदबा और बढ़ गया है। चलते चलते बात हॉकी की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, चंडीगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की टीम ने चेन्नई में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कल जीत दर्ज की। पूल एफ में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली को 4-1 से हराया और पूल डी में कर्नाटक ने त्रिपुरा को 5-0 से पराजित किया। पूल डी में एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ ने उत्तराखंड के खिलाफ 9-0 से जीत हासिल की। पूल बी की बात करें तो मिजोरम ने तेलंगाना को 2-1 से और पूल सी में मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को 17-0 से हराया, जबकि तमिलनाडु ने अंडमान और निकोबार को 43-0 से पराजित किया। तो ये थी खेल की वो तमाम खबरें जिन पर हमारी नजर थी। अब आज सवेरे की बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं हम मुकेश के पास।
धन्यवाद नवीन। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और VC प्रमोद के साथ। और अब आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का, तो प्रमोद सबसे पहले दिल्ली की बात कर लें।
जी बिल्कुल।
जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और मुंबई का रुख करें तो मुंबई में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान जो है 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। तो ये हुई बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। प्रमोद, आप बताएं कि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहने वाला मौसम?
जी, आइए बताता हूँ। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। The minimum temperature was 26 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 29 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां हम अपने श्रोताओं को इतिहास के आज के दिन क्या कुछ घटित हुआ है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास का हिस्सा बन गई। आज 8 नवंबर है। आज ही के दिन 1956 में संयुक्त राष्ट्र ने तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोपीय देश हंगरी से हटने की अपील की थी।
आप 1956 में हैं, मैं 1895 पहले चलता हूं आपको।
जी जी,
William Conrad Rontgen discovered X-rays. Rontgen's discovery revolutionized medicine, allowing doctors to see inside the body without surgery. Mukesh, I think ये बहुत important discovery था ना, X-ray?
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. उससे जो भी हमारे शरीर के अंदर टूट-फूट हुई है, उनका पता चलता है और उपचार भी बहुत अच्छा हो गया है.
Absolutely. In 1960, John F. Kennedy elected as the 35th President of the United States of America, defeating Vice President Richard Nixon in one of the closest presidential elections in American history.
बिल्कुल, 1967 की बात करें तो अमेरिका की हिस्ट्री में ही नेवादा में अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया था।
1968, the Vienna Convention on Road Traffic is signed to facilitate international road traffic and to increase road safety by standardizing the uniform traffic rules among the signatories.
बिल्कुल, और हम चलते हैं 1992 में। 1992 में आज ही के दिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नस्लवाद के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 300,000 लोगों ने हिस्सा लिया था।
And Mukesh, आप डेफिनेटली जानते होंगे नासा के बारे में,
जी,
जो US स्पेस एजेंसी है।
जी,
1984 November 8th, NASA astronaut Anna Lee Fisher becomes the first mom to go into orbit aboard the Space Shuttle Discovery during the STS-51A mission.
और क्रिकेट के इतिहास में भी आज का नाम दर्ज है, और right? वो किस तरह से दर्ज है वो अपने श्रोताओं को बताऊं। 1999 में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था।
वेरी गुड।
2002 की बात करें तो आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की दो दिवसीय बैठक मनीला में आरंभ हुई थी। 2004 में हेग में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर भारत और यूरोपीय संघ सहमत हुए थे, और 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। और आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने श्रोताओं को बताएं कि 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज हुआ था। और वो कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में इसी दिन रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद करने की घोषणा की थी, और नोटबंदी की घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई थी, और निश्चित तौर पर इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छा असर पड़ा था।
एब्सोल्युटली,
काला धन जो है वो बाहर आया था, है? और जो नकली नकदी चला करती थी उस पर काफी अंकुश हुआ।
एग्जैक्टली,
और अब वक्त हुआ है कि अपने श्रोताओं को बताएं कि आज के दिन किन महान व्यक्तियों की पुण्यतिथि है या जयंती। तो सबसे पहले पुण्यतिथि की बात कर लेते हैं। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं तेलुगु सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक बोम्मी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी को। उन्हें सिनेमा में अभूतपूर्व योगदान के लिए सन 1974 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया
था। That's right, he was professionally known as B.N. Reddy. He was Indian film producer, screenwriter, and wonderful scriptwriter also. He was an early figure in the Telugu cinema. Many of his earlier films like Vande Mataram, Devata, and his major film Malleeshwari, starring N.T. Rama Rao and Bhanumati, is considered to be a timeless Indian film classic. We have a song from that movie. Let's listen to that song.
Bilkul.
B.N. Reddy.
Ma ooru గుడిపైన మసలి వస్తున్నావా మళ్ళీ మాసేదైనా నాకు మనసు చల్లగా.
అండ్ ముఖేష్ కే ఆప్ జాంతే హై బొమ్మీ రెడ్డి was the first film personality from the south to receive the Dada Saab Phalke award.
बिल्कुल yeah. और अपने श्रोताओं को ये भी बताएं कि बोमी रेड्डी जो थे वो बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी बी नागी रेड्डी और बी एन कोणा रेड्डी जो तीन भाई थे उनमें से एक थे.
एब्सोल्युटली.
और ये इनमें इन भाइयों में इनके छोटे जो भाई थे बी नागी रेड्डी भी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक थे.
एब्सोल्युटली.
और आज ही पुण्यतिथि है सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी की. वो भारतीय प्रसिद्ध भारतीय उर्दू शायर थे. सादा लेकिन तीखी तराशी और चमकाई हुई जुबान में निहायत गहरी और शोर अंग्रेज बातें कहने वाले हफ्त जबान शायर पत्रकार विचारक अनुवादक गद्यकार और बुद्धिजीवी की आज पुण्यतिथि है. और वो बागी इनकलाबी और परंपरा तोड़ने वाले थे लेकिन उनकी शायरी का लहजा इतना सभ्य और नर्म था कि बस सुनते ही बनता था.
राइट. एंड मूविंग ऑन फ्रॉम डेथ एनिवर्सरीज टू बर्थडेज मुकेश. Today is the birthday of Usha Iyer Utup, Indian pop, filmy, jazz and playback singer during the late 1960s, 70s and 80s. She also sang the title song for the show Sarabhai vs. Sarabhai in its first season. She started her music career in Chennai in 1969, singing in a small nightclub called Nine Gems in the basement of the erstwhile Sophia Theatre Complex on Mount Road, wearing a sari and leg calipers. Her performance was so well received that the owner of the nightclub asked her to stay on for a week. And interesting baat ye hai ki when she was singing at a Calcutta nightclub, Devanand bhi wahin pe the.
Ji.
And he offered her a song from his movie Hare Rama Hare Krishna. Let's listen to that song.
और भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी की आज जयंती है. उनका नाम कथक नृत्यांगना के रूप में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और वे जिस मुकाम पर थीं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया था. और बहुत कम लोग जानते हैं कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में उनका नृत्य देखकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें कथक क्वीन के खिताब से सम्मानित किया था. तो आइए सुनते हैं कुछ. और प्रमोद भारतीय सिनेमा में छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार अरविंद त्रिवेदी की आज जयंती है. और दूरदर्शन पर प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में उन्होंने लंकापति रावण का किरदार निभाया था. तो क्यों ना सबसे पहले ही उनका एक डायलॉग सुन लिया
जी. बिल्कुल.
नाना जी जीना अच्छी बात है परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता. मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं. जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए उसके जीने में भी शान है उसके मरने में भी शान है.
और प्रमोद भारत की पहला महिला निशानेबाज अवनी लेखना का आज जन्मदिन है. उन्होंने पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता था और पैरालंपिक्स के इतिहास में भारत का निशानेबाजी में ये पहला स्वर्ण पदक था. अवनी लेखरा ने महिलाओं के R210 मीटर राइफल्स की क्लास SH1 में पहला स्थान हासिल किया था. उन्होंने फाइनल में 249.6 अंक हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी. तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि आज का आज सवेरे कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाए. तो मुकेश कुमार और VC प्रमोद को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिए लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM गोल्ड.
That's right. Stay tuned for coming up next to Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.